आदरणीय गीता दीदी जी का फिर से एक बार एक हाथ की ताली हिला करके हम अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है। दीदी इस भट्टी में अमरावती और अकोला के भाई बहने हैं जिनकी पहली बार पांडव भवन में ये भट्टी है। अब तक इनकी बारी नहीं आई थी पांडव भवन की भट्टी की। वैसे भी दो दो साल वेट करने के बाद पांडव भवन की भट्टी का चांस मिलता है, तो आज इस लकी ग्रुप के बीच आदरणीय गीता दीदी जी विशेष अपने वरदान लुटाने के लिए, अपने ज्ञान अमृत के द्वारा हमको पावन बनाने के लिए हमारे मध्य पधारे हैं। आप बाबा का ऐसा अनमोल रतन है जिसकी चमक पूरे विश्व में विभिन्न रंगों के रूप में फैल रही है। आदरणीय दीदी जी, 50 ईयर्स, अभी ये वाला 50वां साल है आपको बाबा का बने हुए, तो आपका ये गोल्डन जुबली ईयर चल रहा है। आप लौकिक रूप से भी बहुत मेधावी छात्रा रही, सब तरफ पढ़ाई में आपका विशेष नाम था, आप मेरिट में आते थे। जल्दी ही आपने बाबा को पहचान करके 3 साल के अंदर अंदर अपने जीवन को संपूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। लगभग 47 इयर्स हो गए आप अथक रीति से ईश्वरीय सेवाओं में लगे हुए हैं। 21 वर्ष तक आप गुजरात में सब जोन इंचार्ज के रूप में और अनेक सेवा केंद्रों पर आप सेवा देते रहे, और लगभग 26 वर्षों से आप हेडक्वार्टर पर हैं। पहले आप सबको मालूम होगा कि ज्ञान सरोवर का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और अकोमोडेशन आप देखते थे, और अभी शांतिवन में भी बहुत विशेष सेवाएं आप देखते हैं जिसमें खास कुमारियों की ट्रेनिंग हो या टीचर्स भट्टी हो, उन सब का कुशल संचालन आप करते हैं। बिजनेस विंग के भी आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। साथ साथ सबसे बड़ी बात, आपको हर सब्जेक्ट की गहराई में जाकर के उसके हीरे मोती निकाल करके लाने का बहुत विशेष वरदान प्राप्त है। बहुत भाई बहने कहते हैं गीता दीदी जी को एक बार सुनना शुरू कर दो और लिखना शुरू कर दो तो कलम है कि रुकती ही नहीं। हर शब्द ऐसे मोती पिरोए होते हैं कि एक एक शब्द लिखते जाओ। खास टीचर्स भट्टी में हम लोग देखते हैं, जब भी भट्टी में बहने होकर जाती है तो वापस जाकर के उनसे पूछो कि कोई क्लासेस सुनाओ जो भी आपको भट्टी में कराई गई थी। तो हर ग्रुप में बहने गीता दीदी की पूरी क्लास जरूर सुनाती है, और कोई क्लास सुनाए या नहीं सुनाए, लेकिन वो इतने सटीक पॉइंट्स होते हैं और इतने स्पष्ट होते हैं जो हृदय में उतर जाते हैं। आज विशेष दीदी जी ने बहुत सुंदर विषय आप सबके लिए लिया है, उसमें प्योरिटी की डेप्थ क्या होती है। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, प्योरिटी सिर्फ देह के आकर्षण से दूर होना नहीं, सिर्फ 5 विकारों को ही समाप्त करना नहीं, लेकिन नेगेटिविटी का अंश मात्र भी न हो, इस तरह की गुह्य गति पर आज दीदी जी हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। आदरणीय गीता दीदी जी,
ओम शांति। मधुबन तपोभूमि में आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। आज भी बाबा ने इस विषय पर 2 बातें हमें कही, याद है? प्रश्न के उत्तर में ही बाबा ने कहा कि एक तो पवित्रता के बिगर पवित्र दुनिया की स्थापना हो नहीं सकती है, और इस समय की पवित्रता, बात तो ये है कि भगवान कहें और पवित्र रहे, इस समय की पवित्रता हमें अनेक जन्मों के लिए पवित्र दुनिया का मालिक बनाती है। परमात्मा का विशेष कार्य ही गाया हुआ है, पतित से पावन बनाना। और भक्ति की सारी मेहनत, भक्त पवित्रता के लिए ही करते हैं, पाप धुल जाए, इसलिए नदियों में स्नान करने जाते हैं, तीर्थों पर यात्रा के लिए जाते हैं। आजकल की भक्ति अल्पकाल की प्राप्ति के लिए करते हैं, परंतु सच्चे भक्त तो आत्म शुद्धि के लिए ही भक्ति करते हैं। इसलिए गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, है ना। भक्ति में भल आत्मा देहभान के वश, आत्म विस्मृति के कारण देहभान में आए और देहभान के वश विकारी पतित बने। पर आत्मा को उसमें अच्छा तो नहीं लगा, इसलिए जैसे ही वाम मार्ग पर गए भक्ति भी शुरू हुई, क्योंकि थोड़ी भी अपवित्रता में आत्मा को चैन नहीं महसूस हुआ। अज्ञानता थी, सही ज्ञान नहीं था, परमात्मा को जानते नहीं थे, समय उतरती कला का था, तो देहभान के वश विकारी बनते चले। पर उसमें उनको सुख नहीं लगा, तो भगवान को पुकारने लगी। माने इससे एक बात ये सिद्ध हो जाती है कि आत्मा को पवित्रता ही पसंद है, पवित्रता में ही वो कंफर्टेबल रहती है और उसकी ओरिजिनल नेचर पवित्रता है। धर्म के मुख्य यही दो उद्देश्य माने जाते हैं, आत्मशुद्धि और प्रभु प्राप्ति। उसी के लिए भक्ति करते हैं, जीवन में धर्म को स्थान देते हैं। हमें प्रभु प्राप्ति हो चुकी है, हम सभी ने परमात्मा को जान लिया है। जानना ही देखना पाना कहा जाता है। बिना परिचय मिलन नहीं हो सकता है, तो परिचय पाना ही मिलना है। परमात्मा से कोई फिजिकल मीटिंग तो नहीं करनी है, कोई शारीरिक मिलन तो नहीं है ना, मनोमिलन है, स्नेह मिलन है। पर परिचय बिना वो भी श्रद्धा सिर्फ कही जाएगी। परिचय से ही मिलन होता है। तो परमात्मा हमें मिल चुके हैं, रोज बार बार अपने आप को याद कराना है और महसूस करना है। कौन मिला है, चीज एक बार खाते हैं पर बार 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 याद करने से वो स्वाद का आनंद आता है। वे आज तो गुलाब जामुन खाया, जितनी बार याद करेंगे अच्छा लगता है ना, आनंद आता है। बाबा मिल चुके हैं पर जितनी बार महसूस करते हैं, खुद खुद को याद दिलाते हैं, कौन मिला है। बाबा मिला माना कौन मिला है, बाबा शब्द कॉमन है पर इससे बाबा कॉमन नहीं बन जाना चाहिए। बाबा मिला माना कौन मिला है ना, जितनी महिमा बुद्धि में लाएंगे, याद करेंगे, इससे आत्मा की महसूसता बढ़ती है। इसलिए बहुत सुनने में सामान्य लगती है लेकिन ये मूल सत्य बातें कि हम कौन हैं, किसके हैं, कौन मिला है हमें। दादी कहती है ना, मैं कौन मेरा कौन, बड़ा कॉमन लगता है पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूल बातें हैं। और इन दो चीजों के एहसास से तीसरी बात अपने आप क्लियर हो जाती है कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। फिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसा होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। किसी को कुछ भी हमें कहने की, रोकने की, टोकने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। खुद को ही महसूस हो जाएगा कि उस हिसाब से मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं कैसी होनी चाहिए आत्मा। अब मेरा आहार विहार व्यवहार पहरवाइश, मेरा संग दिनचर्या वांछन कैसा होना चाहिए, हमें कहना क्यों पड़े, हमें खुद समझ में आता है। हमारे अपने अंदर जागृति आती है, महसूस आती है कि अब हम कैसे होने चाहिए। तो अपने आप पुरुषार्थ क्या करना है, वो प्लान हो जाता है। बाबा का मुख्य कार्य पावन बनाना है, हमारा भी मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? हमारा भी मुख्य धर्म और कर्म क्या होना चाहिए? खुद पावन बनना और अनेकों को पावन बनाना। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, सबको बाप का परिचय, क्योंकि जब तक परमात्मा का सत्य ज्ञान नहीं मिलेगा, आत्मा जागृत नहीं होंगी, पवित्रता के लिए पुरुषार्थ ही नहीं बनेगी। तो हमारा धर्म है संपूर्ण पवित्र बनना, पावन बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना। और हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है औरों को भी पावन बनाना। बाबा कहते हैं, जिसने पवित्र जीवन का सुख अनुभव किया है वो दूसरों को विकारी देख नहीं सकेंगे। उसे रहम आएगा, तरस पड़ेगी। इनको भी बाबा का बनाए। आज भी बाबा ने कहा, अपनी रचना को भी पवित्र बनाओ, उनको भी वर्षा दिलाओ। पवित्र जीवन का सुख महसूस हो, पवित्र हम रहते हैं पर सुख महसूस करते हैं, वो चीज है। अपने आप में देखिए, हम अपने आप में देखें, भगवान ने कहा है और हम रहते हैं। बेशक भगवान ने कहा है पर हमारा विवेक भी कहता है कि पवित्र बनना जरूरी है। तो ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात हमने धारण की है। बाबा कहते हैं पर मैं भी कहती हूं, मैं भी समझती हूं। जब तक पवित्र नहीं ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण जन्म ही पवित्र बनने से होता है। भल रोज क्लास करते हो, सेवा करते हो, पर पवित्रता की धारणा नहीं तब तक अलौकिक जन्म नहीं। बेशक हम सहयोगी हैं, सेवाधारी हैं, पर योगी नहीं है। पवित्रता नहीं माना योग बाबा से नहीं है, अभी भी विकार से है। इसलिए बाबा कहते हैं जो पवित्रता का सुख अनुभव करेगा वो दूसरों को भी पवित्र बनाएगा। अपवित्र बुद्धि, सबसे पहली बात कि ज्ञान धारण कर ही नहीं सकते। बाबा कहते हैं ना, धारणा के लिए ईश्वरीय ज्ञान सोने के बर्तन में धारण होता है। सत्य ईश्वरीय ज्ञान इतना शक्तिशाली है, बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए। भक्ति में भी कहते हैं या मन में राम रहेगा या काम रहेगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। भक्ति में भी कहते हैं ना, वो कर नहीं पाते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि उनके पास सत्य ज्ञान नहीं है। उनका योग डायरेक्ट परमात्मा से नहीं है। हम सत्य ज्ञानी हैं, हम परमात्मा योगी हैं। इसलिए पवित्रता ब्रह्मचर्य से हमारा ये अलौकिक जीवन आरंभ होता है। मेहनत की बात नहीं है, हमें मेहनत नहीं है, समझ है, महसूसता है, परिवर्तन है। बाबा रोज समझाते हैं, कहते हैं ना बाबा, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, रोज समझाते हैं। समझने से महसूसता आती है, और महसूसता जितनी गहरी शक्तिशाली परिवर्तन होता है। पहला ही पाठ समझ में आ गया, जीवन बदल गया, है ना, सबका अनुभव है। कितना बड़ा शिफ्ट आ गया लाइफ में, चेंज। एक ही सत्य ने आंख खोल दी, कहां देह में फंसे थे, विकारों और भौतिकता में फंसे थे, और एक ही सत्य की महसूस ताने कि हम शरीर नहीं है, हम तो शरीर से अलग आत्मा है, और हरेक व्यक्ति आत्मा है। इस एक सत्य की समझ ने इंद्रिय रसों से, स्वादों से बुद्धि को निकाल दिया। कहां दिन रात खाने में, पीने में, पहनने में, देह में, संबंधों में लगे हुए थे, अब स्वयं में स्थित है, स्वउन्नति के लिए पुरुषार्थी है। इसके लिए कोई युद्ध नहीं है, जहां आकर सारी दुनिया अटक गई है ब्रह्मचर्य की धारणा पर, हम उस धारणा से अपने पुरुषार्थ को आरंभ करते हैं। देखिए, हम बाबा के बच्चे कितने विशेष आत्माएं हैं। भल अंतिम जन्म में शरीर के नाम रूप साधारण है, पर हम आत्माएं विशेष हैं। बताए ना, हर धर्म हर संप्रदाय किस बात पर आकर अटक गए हैं? पवित्रता। बाकी सब कुछ वो सिखाते हैं, दया करो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, सच बोलो, प्रेम से बोलो, वो सब कुछ तो सब सिखाते, पर कौन सी बात नहीं सिखा पाते हैं? ये महावाक्य कोई बोल नहीं सकता है, पवित्र बनो, योगी बनो। और भगवान का हर आत्मा के लिए ये संदेश है, पवित्र बनो, योगी बनो। और वो हम सब ने स्वीकार कर लिया है। हम कमल आसन पर बैठ गए हैं। अब हम अपना बुद्धि योग बाबा से लगा चुके हैं। अब है कि इस पवित्र जीवन का मुझे उपयोग क्या करना है और मैं क्या कर रही हूं? उनको तो पवित्र बनने में ही जिंदगी समाप्त हो जाती। सारी भक्ति की मेहनत पवित्र बनने के लिए, भगवान को पाने के लिए, पर ये दोनों चीज वो नहीं कर पाते हैं। जिंदगी पूरी हो जाती है, न प्रभु प्राप्ति होती है, न आत्म शुद्धि होती है। हमें प्रभु प्राप्ति है, हम रोज भगवान से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। कोई पूछे तो कह सकते हैं, नशे से कह सकते हैं, निश्चय से कह सकते हैं, हम रोज भगवान से बात करते हैं। हमारा मन किससे बात करता है? देखिए, हर हाल में, हर बात में हम किससे बात करते हैं? बाबा से ही करते हैं। एक बाप दूसरा न कोई का मतलब ही ये है कि हर हाल में, हर चाल में, हर वेश में, हर देश में हम किससे बात करते हैं? बाबा से बात करते हैं। अब हमारा पुरुषार्थ है समान बाप कैसे बने। पवित्र बनकर हम अपने जीवन को संपन्न बनने में, संपूर्ण बनने में सफल करना चाहते हैं, वरना ब्रह्मचर्य तो 7 दिन के कोर्स में ही धारण हो गए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं रोज? रोज हम आपस में मिलके कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? बाबा ने ये संगठन हमें क्यों बना के दिया? क्योंकि एक अकेला संपूर्ण निर्विकारी नहीं बन सकता है। भक्ति में बहुत अकेले अकेले निकल पड़े ना, गुफाओं में, गिरिकंदराओं में, जंगलों में, अकेले अकेले कितने कठिन तप करते रहे लोग। ये भी उन आत्माओं की विशेषता, हिम्मत है, ऐसा पुरुषार्थ किया उन लोगों ने, बन नहीं पाए, विकारों को जीत नहीं पाए। सही ज्ञान न होने के कारण हठ दमन करना पड़ा। हठ दमन से सिद्धि पाई पर शुद्धि नहीं हुई। कितनी आश्चर्य की बात, बताओ सिद्धि बड़ी या शुद्धि बड़ी? लोग सिद्धि पर खुश हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, पर सिद्धि से भी बढ़कर तो शुद्धि है। क्योंकि बिना शुद्धि सिद्धि का उपयोग भी गलत करते, अल्पकाल की चीजों के लिए करते। इसलिए हमारा फाउंडेशन पवित्रता है, ब्राह्मण जीवन की नींव, हमारे संगठन ईश्वरीय परिवार की नींव पवित्रता है। हमारे यज्ञ की विशेषता क्या गाई हुई है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों की विशेषता क्या गाई हुई? यही गाई हुई है ना, पवित्रता, स्वच्छता, सेवा भाव, अलौकिक खुशनुमा चेहरे, यही तो गाया हुआ है। इसलिए इस धारणा का कोई अल्टरनेट नहीं है। इस धारणा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अन्न के लिए फिर भी बाबा कहेंगे लाचारी है तो बाबा की याद में खाओ, जीने मरने का सवाल हो तो खाओ। ऐसी लाचारी नहीं हा? पर फिर भी उसका एक अल्टरनेट, पवित्रता का कोई अल्टरनेट है? कोई अल्टरनेट नहीं। भगवान का हुक्म है, मस्ट मस्ट, इसका कोई अल्टरनेट नहीं। इस हिसाब से जब हम पुरुषार्थी हैं, नित्य पढ़ाई पढ़ते हैं, इस ज्ञान और योग के मार्ग को हमने अपनाया है, तो जरूर हम सब भी अपने जीवन में चाहेंगे ना कि परफेक्ट प्यूरिटी हो, कमजोर नहीं, मिक्स नहीं, सिर्फ कर्म में नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क, बाबा कहते हैं ख्यालों में स्वप्न में भी अपवित्रता न। चाहते हैं ना हम सभी, स्वप्न भी किसी को गंदे आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, उसको ग्लानी होती है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, पवित्र रहता हूँ, मुझे गंदे स्वप्न क्यों आते हैं। तो हम सब चाहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क, संकल्पों में स्वप्न में भी पवित्रता। चाहते हैं ना सभी, हाथ ऊपर करो। चाहना है तो बनने के रास्ते हैं, इसलिए पहले अपनी चाहना विल इच्छा मजबूत बनाइए। सिर्फ कर्म तक नहीं, और हम जानते हैं कि ड्रामा में मौका है अभी, ये संगम का समय है और स्वयं भगवान हमें पावन बना रहे हैं। हम बन सकते हैं, खुद में कॉन्फिडेंस आता है, भगवान बनाते हैं हम बन सकते हैं। भगवान इतना ऊंचा परफेक्ट बना रहा है तो हम थोड़ा बहुत क्यों बने है? ढीला ढाला क्यों बने? कोई आपको डॉक्टर बना रहा है और आप कहो कि कंपाउंडर ही बन जाएंगे, क्यों ऐसा? वो कहता है, ऑफर कर रहा है, आप बन सकते हैं, बल्कि आप थे और आपको ही फिर बनना है। बाबा कहते हैं ना, तुम ही तो थे, कल पहले तुम ही तो बने थे, विजयी रतन आप ही हैं। फिर क्यों नखरा करते हो? बाबा कहते फिर हम क्यों खेल दिखाते? बाबा कहते बच्चे नाज नखरे दिखाते क्यों? हम ही तो थे और हमें ही बनना है। बाबा के कहने से हम बनना चाहते हैं या समय और परिस्थिति के मार से बनना चाहते हैं? ये सिलेक्ट करना है। ऑप्शन है, विचार क्या है? बाबा कहते या तो मैं कहूं और आप मानो और बनूं, नहीं तो समय तो बनाएगा ही। तो किसको शिक्षक बनाना चाहेंगे? ये रोज याद करो, ये रोज अंडरलाइन करना है, रिवाइज करना है रोज। ये मैंने खुद निर्णय किया है बाबा, सिर्फ बाबा कहते हैं नहीं, मेरा भी डिसीजन है, मुझे बनना है। समय के पहले बनना है, बाबा से बनना। ये तो ठीक है कि बाबा हमारी इज्जत रखते हैं और माया का नाम दूषित करते कि माया बच्चों का बुद्धियोग भटका देती, माया थप्पड़ लगा देती। माया तो बिचारी का नाम माया का, पर कारण तो हमारा ही है ना। ये बाबा हमारा रिस्पेक्ट रखते हैं, वरना हमें खुद सोचना चाहिए कि इतनी श्रेष्ठ धारणा के लिए भगवान को बार बार क्यों समझाना पड़े हमें। माया आती है ये कहना ही शर्म की बात है, कोई अच्छी बात थोड़ी है। क्यों आए? विल बनना है मुझे, और आप सब मधुबन भट्टी में आए हैं। बचपन तो पूरा हो गया ना, अब तो युवा काल में आ गए होंगे ना, 5 साल से अधिक ज्ञान में चलने वाले ही आए हैं ना। और आज के बच्चे छोटी आयु में ही युवा जैसे हैं, तो आप भी तो छोटी आयु में ही युवा जैसे हैं ना। मान लो कोई 2 साल का भी आया हो, पर टाइम के हिसाब से आज का बच्चा भी क्या बन गया है? युवा बन गया है। जो 18 साल की आयु पर हम नहीं समझते थे, आज के 12 साल की आयु वाले बच्चे समझते। तो हमारा भी तो ज्ञान रिफाइन होकर के उस टाइम में आए हैं ना नए भाई बहन। तो बचपन तो पूरा ही हो गया, हम युवा अवस्था में आ चुके तो जब खुद ठान लेते हैं, महसूस करते हैं, खुद का विल पावर है, मजबूत है, तो पुरुषार्थ अपने आप चलता है। फिर हमें महसूस होता है कि मनसा में भी तूफान क्यों है ना। कर्म के लिए तो बाबा ने पवित्रता धारण करा दी, कर्मेंद्रिय से कोई भूल नहीं होनी चाहिए, ये भी बाबा हमें कहते हैं ना बार बार साकार मुरली में। कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई भी विकार के वश, कोई भी कर्मेंद्रिय से मुझे भूल नहीं कर रही है। इतनी परिपक्वता हम ब्राह्मण बच्चों में समय के हिसाब से आ जानी चाहिए। अब इस पर आप गहराई से सोचिए, विस्तार कर लीजिए। कोई भी कर्मेंद्रिय से, कोई भी विकार के वश भूल पाप नहीं करना। वाइब्रेशंस, वृत्ति, गंदी वृत्ति भी तो दिखाई देती है ना, परख में आ जाती है। उनकी आंखों से, चेहरे से पता चलता है ना, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। बच्चे भी महसूस करते हैं। तो ये भी कर्म हो गया ना कि आपकी वृत्ति चेहरे पर तो आ गई ना, दृष्टि खराब हुई, दैहिक भाव वाली हुई, तो वो तो कर्म में आ गया ना, अभिव्यक्त हो गया ना। हमसे ऐसा वाइब्रेशन क्यों आए किसी? फिर वो याद करो, हम कौन हैं, अब हम किसके बच्चे हैं, और अब हम इस शरीर में और इस दुनिया में किस लिए रहे हैं। हमें तो कोई दुनिया भोगना नहीं है, हम इस शरीर में और दुनिया में किस लिए हैं? पुरुषार्थ और सेवा के लिए है ना। तो हमारी दृष्टि में क्यों ये चीज आए, वाइब्रेशंस क्यों ऐसे, कोई भी व्यक्ति के साथ, किसी को भी हमसे भय क्यों लगे, भय क्यों लगे? वृत्ति गंदी होती है तो किसी को भय लगता है। अभय दान दो कहते हैं ना, हमसे किसी को भय न हो, इतना हम शुद्ध हों। पवित्र ब्राह्मण बनने के बाद ये पुरुषार्थ बेस तो है ब्रह्मचर्य का, इसके बाद की ये बात। उसमें तो कमजोर होना ही नहीं है, पर चूंकि हम चाहते हैं परफेक्ट बने, हर विकार की रीति से सोच, क्रोध भी क्यों, बाबा कहते हैं ना कि देह संबंध का अधिकार समझ करके ऐसा करते हैं। बच्चा है मानता नहीं है करके गुस्सा, बीवी है मानती नहीं है गुस्सा, मतलब अलौकिक जन्म नहीं लिया है ना। अलौकिक जन्म में हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, अलौकिक जन्म में कोई अधर कुमार अधर कुमारी नहीं है ना, हर कोई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। ब्राह्मण बनकर अगर काम वासना के शिकार होते हैं तो पहला ही पाठ नहीं पढ़ सकते हैं। आत्मभिमानी वो बन नहीं सकते। जहां देह को भूलना है, भोगने की तो बात ही नहीं है, वो प्रथम पाठ ही नहीं पढ़ सकते। हमारा पहला पाठ आत्मभिमानी बनना है। ब्राह्मण बनकर जो गुस्सा करते रहते हैं वो ईश्वरीय परिवार का प्यार नहीं पा सकते। ईश्वरीय परिवार का प्यार नहीं मिल सकता है। हर कोई कहेगा ये बहुत गुस्सा करते हैं, हम इनके साथ सेवा नहीं करेंगे, हम अपने आप सेवा कर लेंगे, हम इनके साथ सेवा नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत गुस्सा करते हैं, सब आपसे दूर हो जाएंगे। घर में भी गुस्सा वाला व्यक्ति जाएगा, बीवी बच्चे दूसरे कमरे में चले जाए, कहेंगे शेर आ गया शेर आ गया, क्योंकि गुस्सा करते हैं। गुस्सा करते मीन्स हम अपने आप को अधिकारी समझ रहे हैं ना, दूसरे को हमारे अंडर समझ रहे हैं ना। बाबा के बच्चे बनने के बाद लोभ लालच में रहते हैं तो भाग्य नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो अपना धन साधन स्थूल सूक्ष्म जो कुछ है उसमें से सफल नहीं कर सकते। कल भी बाबा ने कहा था कि तुम अपने बच्चों को संभालो और जो बच्चे उसमें से दो मुठ ही बाबा के कार्य में सफल करो, कहा था कि नहीं कहा। पर लोभ लालच के कारण वो संग्रह करेगा ना, छूटेगा नहीं। बाबा के बच्चे बनकर मोह में फंसे रहेंगे, देह संबंध के कोई भी देह संबंध में फंसे रहेंगे तो ईश्वर का प्यार नहीं पा सकते। ये सबसे बड़े नुकसान, वो भगवान का प्यार अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो देहधारी के प्यार में फंसा हुआ है ना, देह संबंध के मोह में है, बुद्धि उनकी बाबा तक उड़ ही नहीं सकती। वो तो संबंध के जाल में बुद्धि फंसी है। परमात्मा का प्यार नहीं पा सकते। और अभिमान आता है, चाहे सेवा का, सहयोग का, कला का, विशेषताओं का, गुणों का, अभिमान अगर आता है तो बाबा कहते हैं वो गुण अवगुण हो जाता है। बाबा कहते हैं वहां से ही पतन शुरू हो जाता है। अभिमान आने से जैसे अमृत में जहर की बूंद भी गिर जाए तो वेस्ट। चलो और अभिमान नहीं आता है ज्ञान में आने के बाद, धन का, रूप का, अपने पद प्रतिष्ठा का, वो तो छोड़ देते हैं, पर सेवा का, सहयोग का, गुण, विशेषता, कला का, तो वो गुण अवगुण हो जाता है। क्योंकि बताए ना, ब्राह्मण बनकर, ज्ञानी तो आत्मा बनकर अब हम अज्ञानी नहीं हैं, हम ज्ञानी तो आत्मा है। नित्य भगवान से हम पढ़ते, इंसान से नहीं। रोज भगवान से पढ़ने वाली आत्मा तो बताते हैं ना दुनिया में भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भूल करते हैं तो सबसे ज्यादा सजा किसको मिलती है? क्योंकि ब्राह्मण को ज्ञानी माना जाता है, पवित्र माना जाता है, तपस्वी माना जाता है, भक्ति में भी है नहीं पर माना जाता है। हम हैं, हम ज्ञानी तो आत्मा है, हम पवित्र ब्राह्मण हैं, हम तपस्वी योगी आत्मा है ना, हम सब योगी आत्मा है ना, तपस्वी आत्मा है, हम ग्रस्ती नहीं, त्रस्ती आत्मा है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, फिर कहीं उल्टा सोचते हैं ना कि लो बाबा के बने और ही मुसीबत, एक का 100 गुना दंड मिलता है। तो क्या विचार है, क्या विचार है, ब्राह्मण है बनना अच्छा कि नहीं बनना अच्छा, बराबर सोच के बताइए। ब्राह्मण को 1 का 100 गुना दंड है, बताओ ब्राह्मण अच्छा कि अज्ञानी रहना अच्छा? <laughs> योगियों की प्राप्ति भी तो सौगुण है ना। वो क्यों नहीं सोचते हैं कि अच्छा करेंगे तो भी तो हजार गुना है। और हम भूल करें ही क्यों, है ना। संगम युग में, सीजन में, ये सीजन है ना। आज बाबा ने कहा ना, समय पर पवित्रता का सहयोग देते हैं, पवित्रता की जो प्रतिज्ञा करते हैं। कल बाबा ने बताया ना, वो सच्चे मददगार है। प्राप्ति भी तो अनेक गुना है। और ये सिर्फ बात थोड़ी है, रियलिटी है। अगर प्रकृति भी कण का मन दे सकती है तो परमात्मा नहीं दे सकता है। तो ये बात नहीं है, सत्य है कि पदम गुणा बाबा हमें रिटर्न करता है, करेगा नहीं, कर रहा है ऑलरेडी। तो मुझ आत्मा में विकार का अंश भी क्यों रहे, है ना। और जब हम ऐसे सूक्ष्म गहरे पुरुषार्थ में लग जाते हैं तो फिर और व्यर्थ नकारात्मक बातों का तो सवाल ही नहीं, उसमें बुद्धि जाएगी ही नहीं। कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, मधुबन क्या कर रहा है, सेंटर में क्या करते हैं, घर में क्या, कोई बातों में हमारी बुद्धि जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ खुद ही पहले तो बनना है ना। विश्व को छोड़े हम ही बन के दिखा दें बाबा को तो भी बहुत है। ठीक है ना। तो आप आए हैं समय निकाल करके, और कोई कारोबार है नहीं, तो अच्छी तरह एकांत में बैठ के, अकेले बैठ के गहराई से खुद को देखिए, सोचिए, बाबा से बात करिए और अपने पुरुषार्थ का प्लान बनाइए। ओम शांति।
ओम शांति। दीदी जी, आपका हर बोल बनाता है जीवन महान। आप शिव शक्ति बन कर रही वो परिवर्तन जहान। आपके श्रेष्ठ कर्तव्य की या बोल की हम करते हैं दिल से सम्मान सम्मान। दीदी जी ने आके हमें बहुत सुंदर ज्ञान रत्नों से सजाया, पवित्रता की महानता बताई, और हम दीदी जी का आभार और धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। थैंक्स।
हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही